Progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. ہمارے قرآن کی جلد نمبر 3 سے اور آیات نمبر 82 سے 91 نہیں 82 سے 89 تک کے ہم عارف مسائل پڑھ رہے تھے. پچھلی کلاس میں ہم پیج نمبر 387 تک پہنچے تھے، اور کل کافی ساری باتیں ہوئی تھیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک جو ہے وہ دونوں قسم کا ہے، چاہے بالکل ہی چھوٹی چھوٹی مخلوقات بتوں جیسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا جائے وہ بھی شرک ہے، اور بظاہر بہت زیادہ افضل اور اعلیٰ نظر آنے والی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے وہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، تو اعلیٰ مخلوق جو ہے یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو اس کے اندر سورج، چاند اور ستارے جو بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور ان کا بہت زیادہ ان کی طاقت ہے، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو بھی اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ میں اگر شریک ٹھہرا دیا تو یہ بھی شرک ہی ہوگا، اور یہ شرک بھی وہی شرک ہے، ایک ہی شرک ہے. جس یعنی شرک جس قسم کا بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا. اور یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ جس نے اپنے ایمان کو جو ہے نا وہ شرک کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر ظلم کی تشریح نبی علیہ السلام نے شرک سے کری. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا فرما دیا کہ جس نے اپنے ایمان کو، یعنی ایمان لے آیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، نبی علیہ السلام کو رسول مان بھی لیا تھا، لیکن پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو ہے وہ کسی کو شریک بنا لیا، تو وہ بھی پھر امن سے خارج ہو جاتا ہے اور ہدایت سے باہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو شرط ہدایت کی کیا ہوئی کہ شرک کو ایمان کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا ہے. تو بڑی بڑی مخلوقات کو بھی، جن کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے. جس طرح چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو شریک نہیں کرنا ہے، اسی طرح بڑی بڑی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے، ورنہ گئے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات جو کل شاید بات نہیں ہوئی تھی وہ یہ کہ دیکھیں، اگر حدیث نہ ہوتی تو ہمیں بھی کیسے پتا چلتا کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ لفظ ظلم جو ہے وہ عام طور پر صرف عام گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی ہو گئی، اس کا انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے، ظلم تو اس لفظ کے لیے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ نافرمانی کر دی لیکن انکار نہیں کیا. لیکن حدیث سے پتہ چلا نا، نبی علیہ السلام نے بتایا صحابہ کو، تو وہ حدیث کی شکل میں پھر ریکارڈ ہوا نا. رائٹ، وہ قرآن مجید کے اندر تو یہ والی بات ریکارڈڈ نہیں ہے کہ صحابہ کو بات سمجھ میں نہ آئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور پھر ان کو پتا چلا کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے. قرآن مجید میں تو یہ بات نہیں ہے. تو اگر قرآن مجید کے معانی کے لیے حدیث سے رجوع نہیں کیا جائے گا تو پھر کچھ اور سمجھ رہے ہوں گے. پھر جیسے کہ ایک فرقہ بن گیا باقاعدہ اس طرح کا، جو کہ سنت کو، یعنی حدیث کو، حدیث کے لیے لفظ سنت بھی استعمال کیا جاتا ہے ڈفرینٹ کانٹیکس کے اندر. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے تھے حدیث کو. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ حدیث کی کیا حیثیت ہے. ہم سے ایک بڑے میاں کہنے لگے کہ جی حدیث تو سنی سنائی باتوں کو کہتے ہیں، हमने कहा जी कहाँ से आपने ये सुन लिया कि हदीस सुनी सुनाई बातों को कहते हैं। अरे खामखा पता नहीं कहाँ से सुन लिया और फिर उसको यकीन भी कर लिया इस बात को कि हदीस तो उर्दू जुबान में मुहावरा है ना, सुनी सुनाई बातें जिनकी कोई हैसियत नहीं होती, जैसे सोशल मीडिया की बातें जिनकी कोई हैसियत नहीं होती, तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को भी सुनी सुनाई बातें समझ के बैठे हुए। तो ऐसा नहीं है ना, फिर ऐसा नहीं है हकीकत में, बिल्कुल भी सुनी सुनाई बातें नहीं है हदीस, ये पक्का रिकॉर्डेड इल्म का जखीरा है हदीस मुबारक का। तो एक फिरका बकायदा माजी के अंदर एक फिरका बन गया मुसलमानों के अंदर से, कलमा गो लोगों में से एक फिरका बन गया कि जिन्होंने कहा कि जिसने गुनाह कर लिया ना बस वो ईमान से खारिज हो गया, मोतजिला, उसका नाम भी था मोतजिला। उसने कहा जी जिसने भी गुनाह किया, और कबीरा गुनाह की बात हो रही है यहाँ पर, जिसने भी कबीरा गुनाह किया ना वो बस काफिर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह की फिर वो गलतियां थी कि जिनकी वजह से उनका ये अकीदा बन गया कि हर गुनाहगार जो है वो काफिर हो गया। भाई नहीं है इस तरीके से यार, तो उसके लिए तुम्हें हदीस से रुजू करना पड़ेगा, उसके बगैर कुरान नहीं समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा तो ये तो कल बात हो गई थी, और फिर हमने ये भी बताया था कि आज के दौर में सूरज चांद सितारे वो कौन है जो ये बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन हैं, या थोड़ा अरसा पहले चले जाते तो मुसलमानों में बहुत ज्यादा बिदात और खराफात जो हैं जो कि जड़ पकड़ गई शैतान की साजिशों की वजह से, तो उसके तहत जो है वो मुसलमानों ने भी अल्लाह के नेक बंदों को जो है वो अल्लाह ताला के साथ सिफात में शरीक करार देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो आम बिदती हजरात कहलाते हैं तो वो कलमा गो मुसलमान ही होते हैं, लेकिन किसी अल्लाह के वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी को किसी ने अल्लाह की सिफात में शरीक ठहरा दिया, किसी ने जो है वो मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को जो है वो अल्लाह की सिफात में शरीक ठहरा दिया, किसी ने जो है वो किसी और को, वाकई बड़े में ये तो मज़ारात वाला तो हमारे यहाँ आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुतात हैं इन मज़ारात की जिनके ऊपर जो है वो ये शिर्क किया जा रहा होता है। तो ये ऐसी अल्लाह की मखलूक भी अगर अल्लाह की सिफात में शरीक ठहराएंगे तो वो भी शिर्क ही होगा, हालांकि वो नेक औलिया अल्लाह थे, अल्लाह के दोस्त थे, फिर भी शिर्क ही होगा। और उसी तरह से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हामिल लोग हैं, या जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो दुनिया के ऊपर सबसे ज्यादा मजबूत और गालिब लोग समझे जाते हैं, उनको भी अगर अल्लाह की सिफात के अंदर शरीक ठहरा दिया तो ये भी शिर्क होगा। तो अब इस तरह का भी शिर्क करने वाले जो हैं वो भी अमन से, ठीक है, और वो भी हिदायत से खारिज। ठीक है, तो ये तो हमारे ऊपर डायरेक्टली अप्लाई होता है ना, ये बात हमारे ऊपर डायरेक्टली अप्लाई होती है, बाकी चीजें हमारे ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरज चांद सितारों की परस्तिश नहीं करते, और अल्हम्दुलिल्लाह हम में से तकरीबन सारे ही जो हैं वो औलिया अल्लाह को जो है अल्लाह की सिफात में शरीक नहीं ठहराते। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई हुई है, और जो है वो डेटा साइंसेज आई हुई हैं, और जो है वो एक से एक जो है वो साइंस ने तरक्की की, साइंस वालों ने जो है वो तरक्की करी है, तो हमने उनकी इबादत करनी शुरू कर दी, हमने उनकी इबादत करनी शुरू कर दी। क्या मतलब इबादत करनी शुरू कर दी, हम उनको सामने रख के उनके सामने सजदा नहीं करते, बल्कि हम उनकी वजह से अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना जो है वो जायज समझते हैं, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना जायज समझते हैं, उनके हुक्मों को नहीं तोड़ा जाएगा बस। ठीक है, और ये कि उनकी अजमत हमारे दिलों पर ऐसे छा गई है और समा गई है उनके निजामों की, किसी एक फर्द वाहिद की नहीं, ठीक है, इंसानों की नहीं समाई है कि भाई इस इंसान की या उस इंसान की अजमत, नहीं ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप की अजमत समा गई है, नहीं, ट्रंप को तो गालियां देते हैं, नेतन्याहू को तो गालियां देते हैं, ठीक है, और किसी और भी इस किस्म का कोई होगा तो उसको भी हम गालियां देंगे और बड़ा फख्र समझेंगे कि हमने जो गोरे को गाली दे दी, लेकिन गोरे के निजाम को उसकी अजमत जो है ना वो दिलो दिमाग के ऊपर बैठी हुई है हमारे, और इसकी वजह से दीन को जो है वो सेकेंडरी टर्शरी या कोई और मर्तबा दे रहे होते हैं, तो भाई इसी को तो इबादत कहते हैं, और किस चीज को इबादत कहते हैं। ठीक है, तो आगे फिर हम चलते हैं कि दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम के मुनाजरे में खुली फतह पाई, अच्छा, इन्होंने एक सवाल लिखा था, सॉरी वो देख नहीं सका अभी, कि अहले हदीस कौन होते हैं। किसी ने पूछा था क्या ये सिर्फ हदीस को मानने वाले होते हैं, मुझे भी इसका नहीं पता। नहीं, ये सिर्फ हदीस को मानने वाले नहीं होते हैं। अहले हदीस जो है ना, ये असल में एक, इसका मतलब कुछ और था, आज के दौर में इसका कुछ और मतलब बना लिया गया है। ठीक है, हमारे माजी में अकाबरीन के यानी बिल्कुल असलाफ के जमाने में अहले हदीस की टर्म मशहूर थी। सिर्फ उन लोगों को अहले हदीस कहा जाता था कि जिनको 1 लाख हदीसों से ज्यादा हदीसें याद हो, मुकम्मल याद हो, सनद और मतन के साथ। 1 लाख हदीसों से ज्यादा जिनको याद होती थी ना, उनको अहले हदीस कहा जाता था, कि ये माशाल्लाह हदीस के खास उलमा हैं, खास उलमा कराम हैं, जिन्होंने हदीस के ऊपर इतनी मेहनत करी है कि 1 लाख से ज्यादा हदीसें याद कर ली हैं, उनको अहले हदीस कहा जाता था। ठीक है ना, आज के दौर में अहले हदीस जो अपने आप को कहते हैं, हम तो नहीं कहते उनको अहले हदीस, लेकिन वो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जी बस खुद ही कुरान पढ़ो और खुद ही हदीस पढ़ो और खुद ही जो है ना वो उसका मतलब समझो और बस उसके ऊपर अमल करो। फुकहा की जरूरत नहीं है तुम्हें, फुकहा उनकी, उनसे सीखने की जरूरत नहीं है, उनके फतवों की तुम्हें जरूरत नहीं है, उनके जो है ना वो इज्तिहाद की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस खुद ही कुरान पढ़ो, खुद ही हदीस पढ़ो और बस उससे जो है वो अपना तय करो कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये जो बात कहते हैं, उन्होंने अपने आप को अहले हदीस कहना शुरू कर दिया, हालांकि वो अहले हदीस तो नहीं है, है ना, हालांकि वो अहले हदीस तो नहीं है। अहले हदीस तो वो थे जो कि ऐसे हदीस के ऊपर मेहनत किया करते थे जैसे हमारे असलाफ ने मेहनत करी थी। फिर ये अहले हदीस की जो टर्म है, ये मॉर्फ मॉर्फ हुई, मॉर्फ कहते हैं ना कि खुद पेंतरा बदला, इसको पेंतरा बदलना भी कहते हैं उर्दू के अंदर, तो पेंतरे बदलते रहते हैं ये लोग। फिर कहते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत तब्दीली आ गई, कि नहीं फुकहा की भी जरूरत है। पहले तो ये कहते थे नहीं जरूरत है, फिर कहना शुरू हो गया नहीं, जरूरत है फुकहा की, लेकिन किसी एक फकीर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी मर्जी से फैसला करो, कभी किसी फकीर को फॉलो कर लो, कभी किसी फकीर को फॉलो कर लो, कभी किसी फकीर को फॉलो कर लो। ठीक है, यानी अपनी मर्जी चलाओ, तुम अपनी अकल की फकाहत को सबसे बड़ा फकीर, अपनी अकल को सबसे बड़ा फकीर समझो और अपनी अकल से डिसाइड करो कि कब तुमने इमाम अबू हनीफा का फतवा फॉलो करना है और किस मामले में तुमने इमाम शाफी का फतवा फॉलो करना है, किस मामले में इमाम अहमद इब्ने हम्बल का फतवा फॉलो करना है और किस मामले में तुमने किसी का फतवा फॉलो नहीं करना, बस हदीस पढ़ करके अपनी मर्जी से फैसला कर लेना है। यानी अकल तुम्हारा फकी है, तुम्हारी अकल तुम्हारी फकी है, तुम्हारी अकल तुम्हारी मुजतहद है, ये दोनों एक ही माने में तकरीबन लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये अपने आप को जमाने के तकाजों के मुताबिक चेंज करते रहते हैं, यानी इनके कोई उसूल नहीं होता, कोई उसूल और जवाबत नहीं होते, बस हालात के हिसाब से नए नए उसूल बनाते रहते हैं। तो बहरहाल ये है अहले हदीस का थोड़ा सा बैकग्राउंड। बाकी ये कि उम्मत जो है ना, वो असल में अहले सुन्ना वल जमा, अहले सुन्ना वल जमा, ठीक है, ये असल टाइटल है जो कि मुसलमान के मुसलमान होने के लिए क्या शर्त है, कि वो अहले सुन्ना वल जमा, अगर वो अहले सुन्ना वल जमा नहीं है तो फिर कलमा पढ़ रहा है लेकिन फिर भी मुसलमान नहीं है, क्योंकि वो अहले सुन्ना वल जमा नहीं। ठीक है, कलमा पढ़ रहा है लेकिन साथ साथ शिर्क भी कर रहा है, कलमा पढ़ रहा है लेकिन साथ साथ जो है वो कोई बुनियादी अकीदे का इनकार भी कर रहा है। जो कलमा पढ़ने के साथ साथ शिर्क नहीं कर रहे होते और कलमा पढ़ने के साथ साथ किसी बुनियादी अकीदे का इनकार नहीं कर रहे होते, वो अहले सुन्ना वल जमात कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम और सहाबे कराम, जमात से मुराद सहाबे कराम, ठीक है, तो वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सहाबे कराम की सुन्नत के मुताबिक दीन को समझते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं, तो ये अहले सुन्ना वल जमात कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी तफसील है, ये समझने की कोशिश कर लें। अच्छा, दूसरी आयत में हज़रत ताला ने इरशाद फरमाया कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम के मुनाजरे में खुली फतह पाई और उनको लाजवाब कर दिया, ये हमारा ही इनाम था कि उनको सही नजरिया अता फरमाया। फिर उसके वाजह दलाइल भी अता फरमा दिए। ठीक है, सही नजरिया, क्या मतलब कि उनकी जो नजर थी ना, उनकी जो नजर थी वो ठीक जगह पे पहुंची, सही बात को उन्होंने देखा और उसको समझा और उसको माना। इसको नजरिया कहते हैं। ठीक है, इंसान की सोच, ये नजर से मुराद यहां पर सिर्फ सर के ऊपर जो आंखें लगी हुई है वो मुराद नहीं होती, बल्कि दिल की आंखें भी इसको कह सकते हैं, रूहानी आंखें भी इसको कह सकते हैं, और जहन की सोच भी इसको कह सकते हैं, सही जहन की सोच। ठीक है, यानी चीजों के बारे में वो कंफ्यूज नहीं हुए, वो उन्होंने गलत फैसले नहीं किए चीजों के बारे में, हकीकतों के बारे में, बल्कि सही बात को समझे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हमारा ही इनाम था उनके ऊपर। तिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहिम। ठीक है, ये जितनी हुज्जत उन्होंने, यानी जो उन्होंने दलाई, हुज्जत से मुराद यहाँ पर जो दलाइल उन्होंने बनाए ना अपनी कौम के सामने, हमने उनको दिए थे ये दलाइल। पहले तो जहन की सोच सही होती है, फिर दूसरी चीज होती है कि अब उस सोच को आप अपनी जुबान से बयान भी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ उनको जहन की सोच अता नहीं फरमाई, बल्कि बयान करने का सलीका भी अता फरमाया, बयान करने का मलिका भी अता फरमाया। ये दोनों नेमतें उनको अता फरमाई, वरना बहुत से लोग होते हैं उनको बात तो समझ में आ जाती है लेकिन आगे बयान नहीं कर सकते। ठीक है भाई, जुबान हर एक की तो ऐसे काम नहीं करती है ना, कुछ लोग माशाल्लाह जुबान के बड़े माहिर होते हैं, अल्लाह ने महारत दी है तब वो जबान के माहिर होते हैं। तो हजरत ने यह लिख करके फरमाया कि किसी को अपनी अकल व फहम या तकरीर और जोर खिताबत पर नाज नहीं होना चाहिए, बगैर खुदा ताला की इमदाद व इआनत के किसी का बेड़ा पार नहीं होता। ठीक है, अल्लाह ताला ही ने अता फरमाया है, मदद फरमाई है, वरना कोई किसी काबिल नहीं है, कोई किसी लायक नहीं है। बेड़ा पार होने का मतलब कोई जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, निरी अकले इंसानी यानी महज अकले इंसानी इदरा के हकायक के लिए काफी नहीं है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाते हैं तब जो है ना वो इंसान की अकल भी सही काम करती है, वरना महज अकल से जो है वो आप बुनियाद बहुत बड़े बड़े हकायक वहां तक नहीं पहुंच सकते। जैसे काफिर इंसान जो है, अल्लाह ताला ने उसको भी दिमाग अता फरमाया है, उसके दिमाग के साथ भी जो है वो अकल की सलाहियत मौजूद होती है, लेकिन वो चूंकि वही का इनकार कर रहा होता है इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको इस दुनिया में क्यों भेजा गया है। ठीक है, क्या मकसद क्या है उसका इस दुनिया की जिंदगी का ना? ठीक है, उसको सही बात समझ में नहीं आ रही होती कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हल मेरे परवरदिगार ने, मेरे खालिक ने हलाल किया है, क्या मेरे खालिक ने जो है वो हराम किया है, इस दुनिया की जिंदगी का मकसद क्या है, बंदगी है, आजमाइश है, वो उसको नहीं समझ में आ रहा होता, क्योंकि वो अपनी अकल से ही सारा सोचने की और समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो भाई वही ये अल्लाह की मदद और इयानत होती है, इससे पता चलता है। चाहे बिला वास्ता वही आए, जैसे नबियों पर बिला वास्ता वही आए, चाहे बिल वास्ता वही आए, यानी नबियों के और फिर सहाबा के और फिर उलमाए कराम के वास्ते से वही का इल्म हम तक पहुंचे, इसको कहेंगे बिल वास्ता वही का इल्म हम तक पहुंचा। ठीक है, लेकिन वही के बगैर ये तफसीलात नहीं मालूम हो सकती। तो निरी अकल इंसानी इदराक के हकायक के लिए, हकायक का इदराक यानी समझ हासिल करने के लिए काफी नहीं है, जिसका मुशाहिदा हर दौर में होता रहता है। ठीक है, कि बड़े बड़े माहिर फिलोसोफर गुमराही के रास्ते पर पड़ जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े माहिर फिलोसोफर, फिलोसोफर्स किनको कहते थे, पुराने जमाने के जो जो रिसर्चर्स होते थे और पुराने जमाने के जो जो थिंकर्स होते थे, ठीक है, उनको फिलोसोफर्स कहा जाता। तो गोया के एंशंट हिस्ट्री के साइंटिस्ट, उनके लिए साइंटिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता था बल्कि फिलोसोफर्स का लफ्ज इस्तेमाल होता था। जैसे अरस्तू बड़ा मशहूर है, अरिस्टोटल, ठीक है, प्लूटो और इस तरह के जो भी ग्रीक सिविलाइज, ज्यादातर ये ग्रीक्स होते थे। ग्रीक सिविलाइजेशन के ज्यादा मशहूर हैं फिलोसोफर्स, वरना तो दूसरी सिविलाइजेशन के अंदर भी, चाइनीज सिविलाइजेशन में भी और जो है वो पर्शियन सिविलाइजेशन में भी ये फिलोसोफर्स डेफिनेटली होंगे, लेकिन ग्रीक फिलोसोफर्स हमारे यहाँ ज्यादा मशहूर हैं। क्यों हमारे यहाँ ज्यादा मशहूर है? इसलिए कि हम बरतानिया के गुलाम हैं, ठीक है, और बरतानिया जो है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है। इसी वजह से, क्योंकि ग्रीस भी जो है वो यूरोप का हिस्सा है, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन वाले उन्होंने हमें अपने फिलोसोफर्स के बारे में सबसे ज्यादा बताया, ठीक है, इस वजह से हम ग्रीक फिलोसोफर से ज्यादा वाकिफ हैं बर्तानिया के गुलाम होने की वजह से, ठीक है, वरना फिलोसोफर्स और भी जगहों पे मौजूद थे। तो ये जो फिलोसोफर्स होते थे ना, ये इनके पास कोई ज्यादा इक्विपमेंट नहीं होते थे, जैसे माइक्रोस्कोप्स हों या टेलीस्कोप्स हों या जो है वो और इस किस्म के, ये उस वक्त शायद ये ज्यादातर इक्विपमेंट्स ईजाद नहीं हुए थे, तो ये सोचा ज्यादा करते थे, ठीक है, तो सोच कर तदब्बर करके चीजों के ऊपर और गौर करते, ये ऐसे क्यों हो गया और जमीन जो है वो पता नहीं वो जमीन सीधी है कि जमीन जो है वो गोल है कि जमीन जो है वो पत्थर की बनी हुई है कि मेटल की बनी हुई है, कि ये सोच सोच करके जो है ना वो कोई नतीजे निकालते रहते थे और लॉजिकल कंक्लूजन्स के जरिए से जो है वो नतीजे पे पहुंचते रहते थे, ठीक है। तो अरस्तु की तो बहुत सारी चीजें आपने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ ही लिया होगा, आता रहता है इसके सोशल मीडिया के ऊपर इनके कोट्स। तो ये जो फिलोसोफर्स थे तो बड़े इनके उलू बड़े माहिर समझे जाते थे और आलिम समझे जाते थे, ठीक है, तो लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे उनके इस इन की वजह से, उनकी फलसफियाना बातों की वजह से, लेकिन हकीकत तक नहीं पहुंच सके ना, क्योंकि ये सारे के सारे जो थे वो गैर मुस्लिम थे, ईमान नहीं लेकर के आए। अपने जमान इनके जमानों में भी नबी मौजूद होते थे, ये नहीं है कि अरस्तू उनके जमाने में कोई नबी नहीं होता था या कोई नबी की बात अरस्तू तक नहीं पहुंची, नहीं ऐसा नहीं है, नबी होते थे, लेकिन नबियों का इन्होंने इकरार नहीं किया, नबियों का उन्होंने इनकार किया, इस वजह से ये गैर मुस्लिम ही रहे, ठीक है, तो गुमराही के रास्ते पे पड़ गए, अपनी सारी सोच तदब्बर इल्म के बावजूद गुमराही के रास्ते पे पड़ गए, ठीक है। और बहुत से अनपढ़ जाहिल सही अकीदा और नजरिए के पाबंद हो जाते, ठीक है, जो बिल्कुल फलसफियाना सोचों और फिक्रों से जिनका दूर दूर का वास्ता नहीं होता, उनको अनपढ़ कह कहते हैं लोग, दुनिया के लोग अनपढ़ कहते हैं, लेकिन वो चूंकि नबियों के सामने सबमिट कर देते हैं और नबियों को अपना टीचर बना लेते हैं, उनकी मानना शुरू कर देते हैं, तो वो सही नजरिए के हामिल हो जाते हैं। क्या सही नजरिया? कि भाई हमें इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया है, यहाँ से आने पहले यहाँ पर आने से पहले जो है वो हम कुछ भी नहीं थे, फिर हमारे परवरदिगार ने हमें बनाया और हमें जो है वो आलमुल अरवाह में रखा, जब हमारा वक्त आया दुनिया में आने का तो हमारे परवरदिगार ने हमें इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया के अंदर हम अपने परवरदिगार की रजा को पूरा करने के मकसद से भेजे गए हैं, अगर करेंगे तो फिर हम यहाँ से अगले जहान में अच्छी जगह पे पहुंचेंगे, और अगर नहीं पूरा करेंगे तो अगले जहान जो होगा उनमें हम बुरी जगह में पहुंचेंगे, उसमें हम बुरी जगह में पहुंचेंगे, ठीक है। ये बात जो है वो उन अनपढ़ जाहिलों को तो समझ में आ गई, लेकिन बड़े बड़े फलसफियों को समझ में नहीं आई। आज के दौर के अंदर भी जो इस किस्म की बहुत ही ज्यादा मंतकी बातें करता है, बहुत ही जो है वो यानी अपने जो उर्दू मुहावरे में जिसको मंतक लगाना कहते हैं ना, तो उसको भी फलसफी कह दिया जाता है, ये तो बड़ा फलसफी है भाई, ठीक है, यानी अपने दिमाग से जो है ना वो क्या इसने जो है वो खिचड़ी पकाई भी है और क्या क्या उल्टी सीधी चीजें सोचा चले आ रहा है, लेकिन बंदा नहीं बन रहा, अल्लाह का या हम कहते हैं पंजाबी में कहते हैं बंदे का पुत्र नहीं बन रहा, ठीक है, बंदे का पुत्र नहीं बन रहा, बड़े बड़े जो है वो फलसफियाना ख्यालात इसने सोचे हुए हैं। तो आज भी ऐसे लोगों को फलसफी कह दिया जाता है, क्योंकि ये भी वही पुराने जमाने में ऐसे लोग होते थे, ठीक है। नहीं, ये मौलवी कहाँ से आ गया बीच में? नहीं, मौलवी का लफ्ज यहाँ पे इस पूरी डिस्कशन में मौलवी का लफ्ज अप्लाई नहीं होता, ठीक है, इन्होंने लिख दिया था उसके उनके इस्लाह कर रहे। अच्छा, तो ऐसा होता है, अल्लाह ताला जिसको इल्म अता फरमा देते हैं ना, तो वो बड़े बड़े किताब पढ़े हुए लोगों से आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है, या किताबें लिखने वालों से भी आगे भी बढ़ सकता है अगर अल्लाह ताला की तरफ से इल्म अता कर दिया जाए। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें फरमाई हैं और बड़े बड़े उलमा का तस्करा भी किया है, मशाय ये जो क्या कहते हैं अम्बिया का तस्करा किया है, जो बहुत इल्म वाले लोग थे, ठीक है, मूसा अलैहि सलाम का तस्करा किया कि कितने अल्लाह ताला के तरफ से मिले हुए इल्म वाले थे, लेकिन साथ साथ जो है वो खजर अलैहि सलाम का भी तस्करा कर दिया, जो कि अक्सर उलमा के नज़दीक वो नबी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इल्म लदुन्नी अता फरमाया था, ठीक है। तो मूसा अलैहि सलाम को फिर बाकायदा खजर अलैहि सलाम की शागिर्दी में रहना पड़ा कुछ दिनों तक, और खजर अलैहि सलाम ने उनको बड़े बड़े जो है वो मारिफ बताए, ठीक है। तो बड़े इल्म वाले कौन थे? मूसा अलैहि सलाम, लेकिन खजर अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने एक खसूसी इल्म अता फरमा दिया था जो कि मूसा अलैहि सलाम के पास नहीं था, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उनको एक महदूद वक्त में गोया कि मूसा अलैहि सलाम का उस्ताद बना दिया। तो अल्लाह ताला ऐसे कर सकते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा बढ़ करके एक दूसरा वाकया भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ठीक है। यहाँ तो मूसा अलैहि सलाम और खजर अलैहि सलाम की बात हो रही है ना, जो कि खजर अलैहि सलाम भी कुछ मतलब हो सकता है वो भी नबी में ही में से ही नबियों में से ही हो, लेकिन उनके पास इल्म नदुन्नी था, ठीक है, थे तो इंसान ही ना, और वो भी इल्म वाले थे। लेकिन जो दूसरा वाकया है वो क्या वाकया है, अजीब। एक तरफ अल्लाह ताला के नबी सुलेमान अलैहि सलाम है, राइट, क्या अजीम शान वो नबी थे कि उनकी जो जो हुक्म चलता था वो जिनों के ऊपर और हवाओं के ऊपर और चरिंद परिंद के ऊपर उनका हुक्म चलता था, और उनके लश्कर के अंदर ये सब शामिल होते थे, ठीक है। ऐसे वो एक ऐसे अजीब किस्म के जो है वो बादशाह भी थे और नबी भी थे, लेकिन एक मौके पर अल्लाह ताला ने उनको एक हुदहुद के जरिए से इल्म अता फरमा दिया, हुदहुद के जरिए से, जो कि इंसान भी नहीं था, राइट, परिंदा था, छोटा सा परिंदा जिसके एक बच्चा भी पकड़ करके उसको गला घोट करके मार सकता है, हुदहुद को, इतना नाजुक सा वो परिंदा होता है। लेकिन हुदहुद जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता रहा है मलकह सबा और मलकह सबा की कौम के बारे में, और ना सिर्फ ये कि मलकह सबा की कौम के बारे में बता रहा है, बल्कि ये भी सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता रहा है कि वो सूरज की परस्तिश करते हैं, तो इस वजह से वो गुमराही पर है, ठीक है, इस वजह से वो गुमराही पर है, वो सूरज की परस्तिश करते हैं, ठीक है, उनको तो चाहिए था कि वो एक अल्लाह की परस्तिश करते, एक अल्लाह की जो इबादत करते, ये कौन है, ये हुदहुद है, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है ना ये ऐसे नजायर अपनी कायनात के अंदर दिखाते हैं कि हम जिसको चाहते हैं जिस मौके पर जैसे चाहते हैं उसको इल्म अता फरमा देते हैं, और वो बड़े बड़े जो नोन उलमा होते हैं उनसे आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो बसा औकात छोटे जो हैं इल्म के अंदर वो बड़ों को जो है वो चीजें बताने का उनको मौका मिल जाता है, फर्क ध्यान और एहतियात इस बात की करनी चाहिए छोटों को कि वो अगर उनको किसी चीज का इल्म मिल गया है जो कि बड़े के पास नहीं था, तो वो बयान तो कर दें लेकिन अदब के साथ बयान करें, ठीक है। ये यानी ऐसा ना समझना शुरू कर दें अपने आप को कि जैसे वो बड़ों से बड़े हो गए, भाई उनको एक चीज का इल्म मिल गया है या दो चार चीजों का इल्म मिल गया है तो वो बड़ों से बड़े तो नहीं हो जाएंगे ना, तो वो बदतमीजी या बेअदबी के तो मुस्तहक नहीं हो जाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो बड़ बड़ के बोलना शुरू कर देना, बड़कियां मारना शुरू कर देना, और जो है वो बड़ों को जो है वो बुरा बोलना शुरू कर देना और गलत बोलना शुरू कर देना, ये नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है, उनको किसी चीज का इल्म नहीं है, वो खुदा तो नहीं है ना, ठीक है। जो बड़े उलमा हैं, जो बड़े अकाबरीन हैं, बड़े बड़े जो है वो हमारे सर के ताज हैं, वो खुदा तो नहीं है ना, खुदा होता है जिसको 100% इल्म होता है, खुदा होता है अल्लाह ताला जिसको के हर चीज का इल्म होता है और बिल्कुल सही इल्म होता है, ठीक है। अब हमारे अकाबिर जो हैं वो कितने ही इल्म वाले हैं, कितने ही माशाल्लाह तकवा वाले हैं, लेकिन वो खुदा तो नहीं है ना, तो उनको नहीं पता किसी चीज का, अगर तो कौन सी बड़ी बात हो गई यार, क्यों आप जो है वो उनके जो है वो यानी उनकी बेअदबी करना शुरू हो गए इस वजह से कि उनको किसी एक बात का इल्म नहीं था। भाई क्यों हो उनको हर बात का इल्म? जैसे कि पिछले दिनों हमारे एक भाई से एक दोस्त थे, उनसे बात हो रही थी, वो कहने लगे बस भाई एक आजकल जो है ना वो हाथ धोकर के सारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पीछे पड़ जाते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ये क्यों नहीं करते, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो क्यों नहीं करते, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है वो जिहाद क्यों नहीं करते, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है वो क्या ये इस किस्म की बात है। मैंने कभी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है वो क्या है, उनका क्या काम है, उन्होंने किस चीज का इल्म हासिल किया है, उन्होंने किस चीज के अंदर जो है वो तखसस किया है, स्पेशलाइज किया है इल्म के अंदर ना, ठीक है, दीनी उलूम दीनी फनून के अंदर, उलूम हदीस हैं, उलूम कुरान हैं, उलूम उसूल हैं, उलूम लुगत हैं, ये उनका उनका एरिया है। इसमें माशाल्लाह वो बहुत उन्होंने बड़ा मकाम हासिल किया, अगरचे कि इसमें भी वो 100% अलीम और खबीर तो नहीं हो गए, ठीक है ना, वो तो अल्लाह के लिए खास है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है वो अलीम तो नहीं बन गए, लेकिन इल्म में बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया। तो भाई उन्होंने तो जो उनका उनकी एरिया है, उनके उनकी फील्ड है, जो उनका एरिया है, वो वहीं पर अपना काम करेंगे ना। तुम उनसे हर वक्त ये तवक्को करते हो कि वो सड़कों पे निकल करके जो है वो मुल्क का निजाम बदल दें, राइट, ऐवानों में घुस जाएं, तोड़ फोड़ करके जिस तरह से करते रहते हैं ना, कभी जाके तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं, उधर तो तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया, और जो है ये या ये कि इलेक्शन में खड़े हो जाएं, इलेक्शन में खड़े हो जाएं और फिर वहां पे जाकर के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। वो भाई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने का तो इल्म उन्होंने हासिल नहीं किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो इल्म उन्होंने हासिल नहीं किया, ये तो उनका एरिया है ही नहीं। तो अब हर वक्त जो है ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से ये डिमांड रखना कि वो पाकिस्तान को सही कर दें, पाकिस्तान को ठीक कर दें, पाकिस्तान के सारे मसले हल कर दें, भाई क्यों, कैसे कर दें वो पाकिस्तान के सारे मसले हल, ये उनका एरिया ही नहीं है। जो पाकिस्तान के मसले हल करने का बेड़ा लेकर के निकले हैं, उनसे कहो ना ये बात कि वो क्यों नहीं करते अपना काम, राइट, तुम्हें इतनी तकलीफ है तो उनको जाकर के जो भी उनको करना है ललकारो, जाकर के उनको जो भी करना है जाके करो उनके साथ। ये तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े रहते हो हर वक्त, क्यों, इसलिए कि वो सबसे बड़े आलिम आज के दौर के अंदर वो है, इस वजह से उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं बेवकूफ, ठीक है। तो ये इस किस्म की बेवकूफियां भाई, थोड़ी सी बातें आपको पता चल गई, आपने जो है वो बड़ों को जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर दिया, बुरों से जो है ऐसी ऐसी जो है वो तवक्कोआत रखनी शुरू कर दी जो कि तुकी नहीं बनती जिन तवक्कोआत की, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, आपको पता चल गई दो चार बातें, बस ठीक है यार, शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का, और अपना मुकाम याद रखो कि तुम्हें भी अल्लाह ही ने बताया है, तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये हजरत ने फरमाया कि फिर मौलाना रूमी ने खूब फरमाया है कि बे अनायात हक व खासान हक, के हक और खासान हक ये जो इनायात है ना, उनके बगैर गर मलिक बाशद बाशद सियाह हस्तश्वरक, थोड़ा बहुत इसको कोशिश करी थी समझने की, तो शायद इसका मतलब ये है, क्योंकि मुझे फारसी नहीं आती, तो शायद इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह ताला की इनायात खासा ना होना तो फिर ये बादशाह जो है ना ये भी यानी बस इनका भी वरक स्याह है, इनका भी जो यानी इनके भी कोई कमाल नहीं है इनका, बिल्कुल स्याह वरक है, गोया कि बिल्कुल सादा है, कुछ भी कुछ नहीं है इनके पास, अगर अल्लाह ताला के इनायत ना हो। खैर जो भी है इसका मतलब आगे चलते हैं कि आखिर आयत में फरमाया कि नरफाउ दराजात मन नशा, यानी हम जिसको चाहते हैं जिसके चाहते हैं दराजात बुलंद कर देते हैं। इसमें इशारा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो पूरे आलम में और कयामत तक आने वाली नस्लों में खास इज्जत और मुकाम अता हुआ कि यहूदी नसरानी मुसलमान बुद्ध मत वगैरह सब के सब उनके तकद्दस के कायल और उनकी तआज़ीम करते चले आए हैं, ये भी हमारा ही फजल व इनाम है, किसी के कसब व इक्तसाब का इसमें दखल नहीं है, ठीक है। वैसे हम तो आज तक ये तीन मजाहिब के ही समझते रहे थे कि तीन मजाहिब ही उनको बड़ा समझते हैं, लेकिन मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अगर यहाँ पर बुद्ध मत को भी शामिल किया है तो यकीनन कुछ पढ़ पढ़ा करके ही उन्होंने यहाँ पे बुद्ध मत का भी नाम लिखा होगा, कि इवन बुद्धिस्ट जो है वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा मानते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद की 6 आयतों में 17 अंबिया अलैहिस्सलाम की फहरिस्त शुमार की गई है, जिनमें से बाज़ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद हैं और अक्सर उनकी औलाद हैं और बाज़ उनके भाई भतीजे हैं। इन आयतों में एक तरफ तो इन हजरात का हिदायत पर होना, सालिहीन होना, सिरात मुस्तकीम पर होना बयान फरमाया गया है और ये बताया गया है कि उनको अल्लाह ताला ने ही अपने दीन की खिदमत के लिए मुंतखब और कबूल फरमा लिया है। क्या लिखा? अल्लाह और अल्लाह को मखसूस बंदों की इनायतों के बगैर अगर फरिश्ता भी है तो उसका नाम है आमाल सिया। ठीक, जज़ाकअल्लाह खैर। अच्छा, इन्होंने इस तर्जुमा यहाँ पे नकल कर दिया है कि अल्लाह और अल्लाह के मखसूस बंदों की इनायतों के बगैर अगर फरिश्ता भी है तो उसका नाम है आमाल सिया है। खासान हक से मुराद मखसूस बंदे हैं। अच्छा, एक मिनट, क्या कहा उन्होंने? अगर किसी ने कोई बुरा किया हो दिल में, वो बात आ गई और आपने उसके लिए बुराई या बुग़्ज़ रखा हो, तो क्या वो भी शिर्क में आएगा? किसी ने कोई बुरा किया हो दिल में, वो बात आ गई और आपने उसके लिए बुराई या बुग़्ज़ रखा हो, तो क्या वो भी शिर्क में आएगा? आपकी बात बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो रोमन में लिखते हैं तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसको समझना, लेकिन इवन थोड़ा सा मतलब रब नहीं बन रहा आपकी इबारत का जो आपने लिखी है। तो दिल में मीन के अगर किसी ने कोई बुरा किया हो, तो किसी ने कोई बुरा किया हो तो वो शिर्क बन जाएगा? नहीं ना, तो हर गुनाह जो है वो शिर्क नहीं बन जाता। हर गुनाह या हर अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर देना जो है वो शिर्क नहीं बन जाता। पीछे पढ़ा था ना हमने कि यहाँ पे जो लफ्ज जुल्म है ये आम गुनाह के मानी में इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि शिर्क के मानी में इस्तेमाल हुआ है। थोड़ा सा और क्लियर कर लें अगर अपने सवाल को या पूछना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इन्होंने लिखा ना कि यहाँ यहाँ पे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाज उनके जिनमें से बाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद हैं, तो जहाँ तक हमारा इल्म है तो इसमें आबाओ अजदाद तो से तो सिर्फ जो है ना वो नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। नूह अलैहिस्सलाम तो वो तो एक हो ना, हम उर्दू में तो बाज का जो लफ्ज है वो एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक का नाम जिक्र है, नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है। और भाई भतीजे, तो भाई भतीजे भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिर्फ एक ही यहाँ पे जिक्र है, कौन? लूत अलैहिस्सलाम, ठीक है, जो कि भाई नहीं थे बल्कि भतीजे थे, यानी भाई के बेटे को उन्होंने इस वजह से शायद भाई भतीजे लिख दिया, तो वो भी एक ही थे, ठीक है। हाँ, औलाद के अंदर कई लोगों का यहाँ पे जिक्र है, तो उनके लिए तो बाज का लफ्ज हमें समझ में आता है, लेकिन एक के लिए तो बाज का लफ्ज, लेकिन हमने अपने बड़ों को ऐसे ही करते हुए देखा कि कोई एक बंदा भी अगर काम करता है ना, कोई काम अगर कोई एक बंदा भी करता है तो उसके लिए भी कभी बाज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बाज लोग ये कहते हैं, हालांकि सिर्फ एक बंदे ने वो बात कही थी, बाज लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। कुछ उर्दू के अंदर कुछ का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, हालांकि कहने वाला हमें भी पता होता है कि सिर्फ एक बंदे ने ये बात करी है, लेकिन वो कह देते हैं कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो उर्दू के मुहावरे में भी एक के लिए भी मसलहतन कभी कुछ का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जाता है या बाज का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। और कुरान मजीद में भी जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो एक ही थे लेकिन उनके लिए उम्मत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, ठीक है। काना इब्राहिम उम्मा, इस तरह की जो आयत है, सही है। तो बंदा तो एक ही है लेकिन उसको उम्मत करार दिया इसी वजह से ना। तो इसी तरह से किसी एक बंदे के लिए भी कभी बास का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो सालिहीन होना बास क्या कहें, और ये बताया गया है कि उनको अल्लाह ताला ने ही अपने दीन की खिदमत के लिए मुंतखब और कबूल फरमा लिया है। और दूसरी तरफ ये बताया गया है कि ये जतलाया गया है, बतलाया नहीं, जतलाया गया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में अपने बाप और बरादरी और वतन को छोड़ दिया था। तो अल्लाह ताला ने आखरत के दरजात आलिया और दाइमी और बेमिसाल राहतों से पहले दुनिया में भी उनको अपनी बरादरी से बेहतर बरादरी और वतन से बेहतर अतन वतन अता फरमा दिया। ठीक है, यानी उन्होंने भी हिजरत करी थी, ठीक है, अपने जो बाबुल के इलाके में इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहते थे, इराक का जो इलाका ये था, यहाँ पर जब बाबुल अगर नहीं भी था, कोई दूसरा था तो मुझे नाम उसका याद नहीं है, तो उन्होंने हिजरत फरमाई वहां से, किसके साथ, लूत अलैहिस्सलाम जो उनके भतीजे थे और उनकी बीवी सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके साथ उन्होंने वहां से हिजरत करी, अपना घर बार खानदान कबीला सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, और फलस्तीन की तरफ आ गए। लूत अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने भेज दिया उस तरफ, सुदूम वगैरह के कौमों की तरफ भेज दिया कि भाई तुम वहां पे जाकर के जो है वो दीन का काम करो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है वो फलस्तीन, और फिर जो है वो सफर करके इवन मिस्र तक भी गए। तो ये हिजरत करने से क्या होता है कि फिर दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बेहतर चीज अता फरमा देते हैं, बेहतर खानदान अता फरमा देते हैं, और बेहतर जो है वो वसायल भी अता फरमा देते हैं। जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ भी जो सहाबा ने हिजरत करी तो मदीना मुनव्वरा में उनको भी अल्लाह ताला ने फिर नेमतें अता फरमाई। तो ये हिजरत करना नहीं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। देखें आज के दौर में तो सभी हिजरत कर रहे हैं, लेकिन क्यों हिजरत कर रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में देख लें तो सारा पाकिस्तान जो है वो कराची की तरफ हिजरत कर रहा होता है, ठीक है, और आप ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को देखें, इंक्लूडिंग कराची को भी, अगर आप कराची वाले किधर हिजरत कर रहे हैं तो पूरा पाकिस्तान बशमूल कराची कहाँ हिजरत कर रहा है, मिडिल ईस्ट हिजरत कर रहा है, यूरोप हिजरत कर रहा है, कनाडा हिजरत कर रहा है, अमेरिका हिजरत कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया हिजरत कर रहा है, बल्कि और तो और वो इवन अफ्रीका भी हिजरत कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हिजरत कर तो सभी हिजरत कर रहे हैं, हत्ता कि आज भी इंडिया के अंदर तो कहते हैं हैदराबाद के अंदर या बेंगलोर के अंदर कि भाई कोई गली आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर हर अगला घर जो है ना उसका कोई ना कोई बच्चा जो है वो बाहर है, ठीक है, यानी घर बार माँ बाप सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर, सही है, उसी तरह पाकिस्तान का भी यही हाल है। लेकिन ये हिजरत, ये कुर्बानियां क्यों दी हैं, माल दौलत के लिए, ठीक है, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, इसी दुनिया के अंदर अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। तो फिर जब हिजरत करते हैं तो फिर माल और दौलत मिल भी जाती है, ठीक है ना, जहां पे ज्यादा माल होता है उधर ही हिजरत करते हैं ना, गरीब इलाके में तो कोई हिजरत करके नहीं जाता इंडिया पाकिस्तान को छोड़ करके, ठीक है, तो माल और दौलत मिलती है, बिल्कुल यही जो है ना वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन अल्लाह वाले सहाबा कराम इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम इन्होंने भी हिजरत करी, लेकिन किस लिए हिजरत करी, अल्लाह के दीन की खातिर, यानी एक नजरिए की खातिर हिजरत करी, ठीक है ना, इसलिए नहीं कि मदीना मुनव्वरा में ज्यादा माल दौलत मिलता है इनको, इस वजह से इन्होंने हिजरत नहीं करी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी इस वजह से हिजरत नहीं करी कि वहां वहां पे उनको कोई पूछता नहीं था, माल दौलत नहीं था, इस वजह से जो है वो दूसरी जगह चले गए, नहीं, अल्लाह की खातिर हिजरत करी। ये हिजरत जो है ना ये आसान काम नहीं, माल दौलत के लिए हिजरत तो फिर, क्योंकि फिर जब माल दौलत मिलती है तो फिर जो है वो प्लेन का टिकट भी मिल जाता है, ठीक है, कि जी हर साल जो है वो आप अपने घर वालों से मिलकर के वापस प्लेन के अंदर जा सकते हैं, फिर आपको जो है वो कम्युनिकेशन के जराए भी मिल जाते हैं, फिर आप जो है वहां से कमा कमा करके जो है वो इंडिया पाकिस्तान वापस भी भेज रहे होते हैं। तो इस वजह से इसमें कुर्बानी है, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं है। लेकिन दीन की खातिर जो कुर्बानी है ना, अपने बड़ों को छोड़ देना, अपने खानदान को छोड़ देना, उसमें फिर कुछ पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला के ऊपर एतमाद कि अल्लाह ताला आगे मामला चलाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है, क्योंकि खालिसतन नजरिए की खातिर होता है। लेकिन अल्लाह ताला वादा ये फरमाते हैं कि भाई मिलेगा, मैं उधर भी तुम्हें दूंगा खाने को, बल्कि पुरानी जगह के मुकाबले में ज्यादा ही तुम्हें अच्छा ही खाने को दूंगा, और दोस्त अहबाब भी दे दूंगा, और हत्ता के रिश्तेदार भी दे दूंगा। तो इनको फिर इस तरीके से सब कुछ अल्लाह ताला ने अता फरमाया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद कयामत तक जितने अंबिया व रसूल मबऊस फरमाए गए वो सब उनकी औलाद में से, सब के सब। एक शाख जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से चली, उसमें तमाम अंबिया बनी इसराइल आ गए, और दूसरी शाख जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से चली, तो उसमें सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन, नबी अल अंबिया, नबीउल अंबिया, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और ये सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुर्रियत हैं। इससे ये भी मालूम हुआ कि अगरचे इज्जत व जिल्लत और निजात व अजाब का असल मदार इंसान के अपने जाती आमाल पर है, लेकिन आबाओ अजदाद में किसी नबी वली का होना या औलाद में उलमा सुलहा का होना भी एक बड़ी नेमत है, और इससे भी इंसान को फायदा पहुंचता है। ठीक है, इंसान अपने अमल को तो दुरुस्त कर सकता है ना, लेकिन हकीकत तो ये है कि अपनी औलाद के अमल को दुरुस्त नहीं कर सकता। हाँ, उनकी तरबियत और तालीम का इंतजाम कर सकता है, लेकिन तौफीक तो नहीं दे सकता ना अपनी औलाद को। ठीक है, तो अल्लाह ताला की तौफीक होती है जिससे कि औलाद भी उलमा सुलहा में शामिल होती है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक एडिशनल नेमत होती है। अच्छा, इन्होंने फिर थोड़ा सा शायद रिफ्रेस किया अपने सवाल पे, तो वो पढ़ लेते हैं कि अगर किसी ने आपके लिए कुछ बुरा कहा हो और आप उसके लिए दिल में बुराइयां रखते हो कि इसने बुरा किया है, तो क्या ये शिर्क होगा? नहीं, इसको शिर्क नहीं कहते, इसको कीना कहते हैं या बोस कहते हैं। लेकिन अगर उसने वाकई आपके साथ बुरा किया है, तो आपके दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत के जज्बात तो नहीं आएंगे ना? ठीक है, वाकई अगर उसने बुरा किया है तो उसके लिए आपके दिल में कोई मोहब्बत के जज्बात तो पैदा नहीं होंगे, जाहिर बुराई ही दिल में आएगी आपके। ठीक है, तो बस कोशिश करनी चाहिए कि या तो उसको माफ कर दें, दिल को उसकी तरफ से साफ कर लें। ठीक है, और अगर ये बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए उसको माफ करना, तो फिर अपने आप को दूसरे कामों में लगाएं, अच्छे कामों में लगाएं, ताकि उसके ख्याल जो है ना वो आपके दिमाग में आए ही नहीं। आप दूसरे अच्छे कामों के अंदर लगी हुई हो तो उसका ख्याल नहीं आएगा आपके दिमाग के अंदर। ठीक है, तो बहरहाल ये शिर्क नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना एक रूहानी बीमारी कहलाएगी जिसको बोगज़ और कीना कहते हैं। ठीक है, बस कोशिश करें कि उनको आप माफ कर दें और उनका ख्याल अपने दिल से निकाल दें। अच्छा, आगे फरमाते हैं मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह कि इन 17 अंबिया अलैहिस्सलाम में जिनकी फहरिस्त आयात मस्कूरा में दी गई है, एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जद्दे अमजद हैं। ठीक है, यानी ऊपर के नबी बनते हैं। बाकी सबको उनकी जुर्रियत फरमाया है, वो मिन जुर्रियती ही दाऊदा व सुलेमाना अल आया, यानी इस आयत के आखिर तक। तो इसमें एक इशकाल तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हो सकता है कि वो तो बगैर बाप के पैदा होने की वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुख्तरी औलाद में से हैं। ठीक है, यानी बेटे से नस्ल चलती है ना दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला ने यही उसूल बनाया कि नस्ल जो है वो बेटे से चलती है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम तो अब्बा के बगैर ही दुनिया में पैदा हुए, तो वो कौन से बेटे से फिर? तो ये एक सवाल पैदा होता है कि वो तो पोते नहीं बल्कि नवासे बनते हैं। ठीक है, मरियम अलैहिस्सलाम तो बनती हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे के हिसाब से तो फिर वो नवासे बने ना, तो उनको जुरियत कहना कैसे सही होगा? तो इसका जवाब आमा उलमा फुकहा ने ये दिया है कि लफ्ज जुरियत पोतों और नवासों दोनों को शामिल है, और इसी से इस्तदलाल किया है कि हजरत हसनैन रजी अल्लाह अनहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्रियत में दाखिल हैं। ठीक है, यानी कोई अगर कहे कि अच्छा बेटे से नस्ल चलती है, तो हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो तो नवासे थे, वो पोते तो नहीं थे, तो फिर उनसे कैसे नस्ल चली? ये अहले बैत की जो नस्ल चली है, ठीक है, या जो हाशमी और जो है वो सैयद कहलाते हैं, तो वो कैसे सैयद बन गए ना सारे के सारे? हम भी अपने आप को सैयद कहते हैं, तो भाई कैसे सैयद? हालांकि ऊपर से जो है वो नवासों की औलाद है। तो उसका जवाब दिया उलमाए कराम ने कि देखो कुरान जो है ना, उससे हम डेफिनेशंस लेते हैं चीजों की, तो कुरान मजीद जो है वो नवासों को भी जो है वो जुर्रियत में शामिल कर रहा है। ठीक है, जैसे ईसा अलैहि सलाम का नाम यहाँ पर जुर्रियत में आया ना, तो इस वजह से हसन और हुसैन करीमैन रजी अल्लाह ताला अन जो है ये भी नबी अलैहि सलाम की जुर्रियत ही कहलाएंगे। किसी ने यहाँ पे लिखा कि हमें तो नेक आबा व अजदाद से फायदा तब होगा ना जब हमारा ईमान होगा। जी, ईमान के बगैर तो कोई फायदा नहीं होने वाला, बिल्कुल। बाप दादा कितने ही अजीम क्यों ना हो, अगर ईमान नहीं औलाद के अंदर तो फिर तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं ना उनकी इस जरूरियत के होने का। इफ सम पीपल हैव इररिलेवेंट डिमांड्स फ्रॉम उलमा लाइक हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, कैन वन अदर रीजन ऑफ इट ऑल्सो बी दैट दोज पीपल डोंट नो द रियल टास्क एंड एफर्ट्स ऑफ उलमा दैट दे यूज टू डू, एंड दे थिंक दैट उलमा हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। जी, दैट इज वन ऑफ द रीजन्स कि लोगों को पता ही नहीं कि उलमा का काम है क्या। वो समझते हैं उलमा का काम जो है ना वो दुनिया का हर काम उलमा का काम है। ठीक है, कुछ लोग ये समझते हैं और कुछ लोग ये समझते हैं कि उलमा का कोई भी काम नहीं। ठीक है ना, तो दो एक्सट्रीम्स हैं उलमा के बारे में हमारे माशरे में। एक ये एक्सट्रीम है कि उलमा का कोई काम नहीं है, बस ये मच्छर मारते हैं, ठीक है, मक्खी मारते हैं, मच्छर मारते हैं और कोई काम नहीं करते इनका। ठीक है, और दूसरी एक्सट्रीम ये है कि हर काम उलमा को करना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसे भी माशाल्लाह नमूने मौजूद है हमारे दरमियान, ये जो कहते हैं कि उलमा जो है वो चांद पे क्यों नहीं गए, राइट? ये तो एक है ना, पाकिस्तान को ठीक क्यों नहीं किया, इससे भी बढ़ के हैं, इससे भी बढ़ के हैं कि उलमा चांद पे क्यों नहीं गए और उलमा ने कोई साइंसी तरक्की क्यों नहीं करी, ये भी है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हैं भाई हालत क्या, कल बात हुई थी ना कि भाई जाहिल का शागिर्द जाहिल ही होता है, तो लॉर्ड मुकाले के शागिर्द तो फिर लॉर्ड मुकाले ही जैसे ही होंगे ना, तो वो फिर ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि हम सब हैं लॉर्ड मुकाले के शागिर्द, इल्ला ये कि किसी ने तौबा करी हो और फिर जो है वो सही इल्म वालों से इल्म हासिल किया हो, वो तो फिर एक्सेप्शन कहलाएगा, लेकिन बाकी तो सारे के सारे इसी में आएंगे ना, जहालत के अंदर आएंगे, इसी किस्म की फिर मारते रहते हैं हम लोग इस किस्म की बातें, ये क्यों नहीं करते और वो क्यों नहीं करते। और क्या लिखा, उलमा भी जाए हर काम में तो भी ये कहेंगे कि उलमा काम नहीं। हाँ, ये भी फिर तीसरा तीसरे नमूने ये भी हैं कि जब उलमा अगर किसी काम में घुस जाए ना, किसी दूसरे काम में जो इनके हिसाब से उलमा का काम नहीं था, तो उस वक्त ये कहते हैं कि ये उलमा ये वाला काम क्यों कर रहे हैं, ये तो उलमा का काम नहीं है, जैसे सियासत। ठीक है, हालांकि सियासत तो उलमा के कामों में से एक काम है भी। ठीक है, एक एक एंगल से देखा जाए तो उलमा के कामों में सियासत भी है, अगर जैसे सब उलमा का ये काम नहीं है, लेकिन चंद एक उलमा जो है वो सियासत का काम भी करते हैं और करना चाहिए भी उनको, तो वहां पे उनको तकलीफ हो जाती है कि ये क्यों सियासत करते हैं, इनको सियासत नहीं करनी चाहिए। तो अजीब गरीब किस्म का जहालत है, जाहिल आदमी जो होता है वो फिर उसकी कोई तुक तो होती है नहीं है ना, उसकी कोई कली नहीं बैठती कि ऊंट न ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। तो यही मामला जाहिल के ऊपर भी अप्लाई होता है कि जाहिल तो जाहिल तेरी कौन सी कल सी थी, हर बात ही उल्टी करनी है, बात ही बेवकूफी करनी है। मैं दूसरों को नहीं कह रहा, आपको नहीं कह रहा जाहिल, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि हम सारे के सारे जाहिल हैं इस मामले में। अच्छा, वो क्या है कुरान मजीद क्या है ना, अल्लाह ताला खुद भी फरमाते हैं ना, यालमूना वाहिरम मिन अल हयात दुनिया, कि इनको तो दुनिया के जाहिर का इल्म है, वो बिल आखिरत हम गाफिलून, आखिरत के बारे में तो ये गाफिल है ना, तो आखिरत के बारे में गाफिल होना अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो बस दुनिया के जाहिरी चीजों का इनके पास इल्म है, वरना तो यानी इस इल्म का तो इनको आखिरत के लिए तो फायदा नहीं है ना। तो ठीक है, जाहिर का इल्म है, वो एक जरूरत है, उसके तहत जो है वो आप काम करें, लेकिन अब ये तो नहीं है ना कि आपको जाहिर का इल्म है तो इस वजह से आप जो है वो बातिन के इल्म वालों को अपनी मर्जी के मुताबिक हाँकना शुरू कर दें, उनके अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दें उनके बारे में। अच्छा, दूसरा इश्काल हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मुतालिक है कि वो औलाद में नहीं बल्कि भतीजे हैं, लेकिन इसका जवाब भी वाज़ह है कि उर्फ में चचा को बाप और भतीजे को बेटा कहना बहुत ही मुतआरफ बात है। ठीक है, तो लूत अलैहिस्सलाम को यहाँ पर औलाद में शामिल क्यों किया? क्योंकि उर्फ आम के अंदर ऐसा किया जाता है। आयात मस्कूरा में जैसे आज़र की जब बात आई थी पिछली ग्रुप ऑफ आयात के अंदर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से, तो वहां पर भी क्योंकि कुछ दलायल ऐसे हैं कि जिससे कि आज़र का चचा होना जो है वो साबित होता है, तो उसका भी यही जवाब दिया कि भाई अल्लाह ताला ने आज़र को बाप करार दिया, अगर वो चचा थे भी तो भी ये गलत नहीं है बाप करार देना, क्योंकि उर्फ के अंदर चचा को भी जो है वो बाप कह दिया जाता है। तो तफसीर के लिए जो है ना फिर उर्फ का इल्म होना भी जरूरी होता है, वरना बात समझ में नहीं आएगी कि भाई तारीख में तो हमने पढ़ा था कि वो चचा हैं, तो कुरान मजीद में तो बाप लिखा हुआ है, तो ये किसी क्या तफसीर होगी फिर? ठीक है, जब तक लफ्ज के उर्फ का नहीं पता चले, इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम के बारे में फिर कंफ्यूजन रह जाएगी अगर उर्फ का पता ना हो, यानी कॉमन यूजेज। अंग्रेजी में उर्फ को क्या कहेंगे? कॉमन यूजेज। आयात मस्कूरा में हजरत खलील अलैहिस्सलाम पर इनामात इलाहिया बयान फरमाकर एक तरफ तो ये कानून कुदरत बतला दिया गया कि जो शख्स अल्लाह ताला की राह में अपनी महबूब चीजों को कुर्बान करता है अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी उससे बेहतर चीजें अता फरमा देते हैं। ठीक है, भाई जो भी महबूब चीज है ना वो जब कुर्बान करते हैं अल्लाह ताला को पता है कि फलाने शख्स की कौन सी महबूब चीज है। हर सेम चीजें हर एक के लिए महबूब नहीं होती, जैसे माल और दौलत, हम समझते हैं कि हर एक के लिए माल और दौलत महबूब है, तो जब तक माल और दौलत को कुर्बान ना हो तो उस वक्त तक जो है वो अच्छी चीज नहीं मिलेगी। नहीं, हर एक के लिए माल और दौलत महबूब चीज नहीं होती। कुछ लोग माल और दौलत के बारे में, या तो उनके पास पहले इतना ज्यादा माल और दौलत है कि वो तंग आए हुए हैं अपने माल और दौलत से, तो वो कोई थोड़ी है उनके लिए महबूब चीज। उसी तरह कुछ लोग जो है वो माशाल्लाह पैदाइशी वो होते हैं सूफी, ठीक है, मिजाज ही उनका ऐसा होता है कि बस कम में गुजारा कम में गुजारा कम होगा, उनको पता फिक्र ही नहीं होती कुछ ज्यादा चीजें खरीदने की और ज्यादा जो है वो एंटरटेनमेंट की, उनको परवाह ही नहीं होती। ठीक है, तो उनके लिए फिर माल और दौलत जो है ना ये अजीज नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं, आप भी शायद उनमें से अक्सर हों, कि जिनके लिए सबसे अजीज जो है वो दोस्त होते हैं, दोस्त, ठीक है ना, उनको माल और दौलत की कोई परवाह नहीं है, उनको जो है वो कपड़े लत्ते की परवाह नहीं है, उनको जो है वो कैरियर की परवाह नहीं है, उनको उनके लिए दोस्त सबसे अहम चीज है, तो वो दोस्त उनके महबूब कहलाएंगे। ठीक, और कुछ लोगों के लिए खानदानी रिश्तेदारियां ये सबसे महबूब चीजें होती हैं, वो फैमिली वो ना फैमिली मैन, ही इज अ फैमिली मैन। ठीक है, अब वो कजन्स, कुछ लोग हमने देखा माशाल्लाह कजन्स के साथ उनका ऐसा ताल्लुक होता है ये बस वो सारी दुनिया कुर्बान कर देंगे कजन्स के ताल्लुक को कुर्बानी करेंगे। ठीक है, तो ये हर एक के लिए अलग अलग महबूब चीजें होती हैं। अल्लाह ताला के यहाँ जो कबूलियत मिलती है ना वो उस चीज को कुर्बान करने से मिलती है कि जो कि आपके लिए महबूब, और अल्लाह को पता है कि आपके लिए क्या चीज महबूब है। ठीक है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ठीक है, कि तुम नेकी को उस वक्त तक पा ही नहीं सकोगे हत्ता कि तुम उस चीज को कुर्बान ना करो, यानी खर्च ना कर दो, अपने पास से दूर ना कर दो जो कि तुम्हें महबूब है। ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों को कुर्बान किया जो कि उनके लिए महबूब थी, अल्लाह ताला ने उनको फिर दुनिया में भी इससे बेहतर चीजें अता फरमा दी। दूसरी तरफ मुशरिकीन ने मक्का को ये हालात सुनाकर इस तरफ हिदायत करना मकसूद है कि तुम लोग मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते, तो देखो जिनको तुम भी सब बड़ा मानते हो, तुम सब भी बड़ा मानते हो, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनका पूरा खानदान, वो सब यही कहते चले आए हैं कि काबिल इबादत सिर्फ एक जात हक तआला है, उसके साथ किसी को इबादत में शरीक करना या उसकी मखसूस सिफात का साझी बतलाना कुफर और गुमराही है, तुम लोग खुद अपने मुसल्लमात की रूह से भी मुलजिम हो, यानी जिन चीजों को तुम खुद सही समझते हो तुम्हारे नजदीक मुसल्लम है, यानी ऑथेंटिक बातें हैं तुम्हारे नजदीक भी, तुम उनके हिसाब से भी तुम मुलजिम, गुनाहगार, खताकार हो, क्योंकि ये लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में तो ये बुत होते ही नहीं थे। हत्ता कि इनको यही भी पता था कि वो क्या नाम था उसका, कुरैश में से था ना, लुवई, ठीक है ना, ये जो लुवई बंदा था ना, ये शाम गया था सफर करने के लिए। ये सीरत में भी हमने पढ़ा, और हमारे एक दोस्त है, उन्होंने भी रिसेंटली भी ये बात छेड़ी बात बात के दौरान, कि ये जो बंदा था ये शाम गया, तो शाम के अंदर बड़ी उस जमाने की वो तरक्की याफ्ता मुल्क था शाम का इलाका, ठीक है, तो ये उनके तरक्कियात से बड़ा मुतासर हुआ, ठीक है, तरक्कियात से उनके जो थे ना सिस्टम्स जो थे ना वहां पे सिस्टम्स, देखें आज भी तो हम यूरोप के सिस्टम्स मुतासर है ना, ये उस जमाने में यानी नबी अलैहिस्सलाम से कोई ये कई 100 साल पहले मक्का मुकरमा में रहता था, वहां के सिस्टम से ये मुतासर हुआ शाम के। तो इसने शाम वालों से पूछा कि तुम इबादत किन किन चीजों की करते हो? उन्होंने कहा कि हम तो ये बुत हैं, इनकी इबादत करते हैं, क्योंकि ये बुत परस्ती जो है वो शाम में होती थी, ठीक है। तो इसने उनके सिस्टम से मुतासिर होकर के उनके बुतों की इबादत शुरू कर दी, हत्ता कि ये वहां से बुत लेकर के मक्का मुकरमा आ गया, ठीक है, और मक्का मुकरमा में इसने बुत परस्ती की बुनियाद डाली, इसने बुनियाद डाली बुत परस्ती की, वरना उससे पहले मक्का मुकरमा में बुत परस्ती नहीं होती थी, वो दूसरे गुनाह किया करते थे, बुत परस्ती नहीं करते थे, ठीक है। और ये बात नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के कुरैश लोगों को ये बात पता थी, और वो मानते थे इस बात को कि लुवई के जमाने में बुत परस्ती शुरू हुई है, उससे पहले बुत परस्ती थी ही नहीं, लेकिन क्यों करते थे फिर? इनके फायदे, दुनियावी फायदे मिलते थे उनको इससे, ठीक है, ये अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं, कोई गलत काम खुद करना चाहते थे, इनका नफ्स जो है ना वो कोई गलत काम करना चाहता था, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए वो कह देते भाई ये तो उधर से हुक्म आया है, ये बुत साहब की तरफ से हुक्म आया है, ठीक है, तो इनका काम जो है वो फिर वो जेन्युइन हो जाता था, लोग मानना शुरू हो जाता, अच्छा ये वो खुद कोई थोड़ी ये काम कर रहे हैं, ये तो बुत से हुक्म आया है इस वजह से ये काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इस तरह से उनको जस्टिफिकेशन मिल जाती थी, ठीक है। जैसे कि आज के दौर के अंदर कुछ लोग होते हैं ना हुकूमत वाले, ठीक है, तो उनको जो है ना वो कोई काम करना होता है गलत है, सही है, तो अब वो क्या करते हैं कि भाई कहते हैं भाई देखो डेमोक्रेसी जो है ना ये सही तरीका है हुकूमत करने का, तरीका ये डेमोक्रेसी जमहूरियत, ठीक है, तो अब जो है वो अगर ऐवान की अक्सरियत जो है वो किसी काम को कह दे कि हाँ ये तो जरूरी है, तो अब वो काम जो है वो कानून बन जाएगा, ठीक है, हालांकि वो गलत काम है, उनको पता है कि ये गलत काम है, लेकिन उसको कानून बनाने से पहले वो सहारा किसका लेते हैं, डेमोक्रेसी का सहारा लेते हैं, जमहूरियत का सहारा लेते हैं, कि भाई ऐवान यानी जो हमारे पार्लियामेंट है तो उसकी जो अक्सरियत है ना वो अगर उसको सही कह देगी तो फिर वो सही हो जाएगा, और फिर जो है वो लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है वो डेमोक्रेसी को अच्छा समझते हैं, डेमोक्रेसी को सही समझते हैं, इस वजह से उनको मानना पड़ जाएगा ये वाली बात, ठीक है। तो गोया कि आज की डेमोक्रेसी, आज के जो ऐवान है वो लुवई के जमाने के बुत, राइट, ये जो आज की डेमोक्रेसी है ये क्या है, ये आज का बुत है, बुत, ठीक है, तो वो अपने गलत कामों को जस्टिफाई करने के लिए, हाँ जी बुत ने कह दिया है अब सब मान जाएंगे, ठीक है, उसी तरीके से आज जो है वो, हाँ जी वो ऐवान ने कह दिया है अब सब मान जाएंगे, हाँ जी ऐवान ने कह दिया बस ठीक है, तो ये तमाशे जो है वो चलते रहते। असल में कोई बुत बुत छुत ने कोई कुछ नहीं कहना था, कहना तो उन्होंने खुद ही था, खुद ही क्या चाह रहे थे, जो काम करना होता था वो, ठीक है, तो इस तरह से बुत परस्ती शुरू हुई, उनको पता था कि ये गलत है, उनको पता था कि ये उनके तमाशे जस्टिफाई करने का एक जरिया है, और कुछ भी नहीं है इसकी हैसियत, लेकिन जाहिलों को बेवकूफ बनाते थे, जो उनसे भी ज्यादा बड़े जाहिल थे उनको बनाते थे इस तरीके से, जिस तरह आज बनाते हैं, मैं तो ये हुकूमत वाले सारे जाहिल, ठीक है, लेकिन उनसे भी बढ़ के जो जाहिल आवाम हैं तो उनको बेवकूफ बनाने के लिए डेमोक्रेसी का तमाशा खेला हुआ इन्होंने। और कहाँ से आई ये डेमोक्रेसी? इसका ताल्लुक इस्लाम से तो है नहीं, इस वाली डेमोक्रेसी का, ठीक है, इस वाली डेमोक्रेसी का ताल्लुक तो वहां से है, बेंजामिन क्या नाम था उसका, अब्राहम लिंकन, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये किसने कहा? नबी ने कहा? नहीं, अब्राहम लिंकन ने कहा, ठीक है। तो कहते हैं कि जी तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते, देखो जिनको तुम भी बड़ा मानते हो ना, तो वो भी सिर्फ एक ही खुदा की इबादत किया करते थे। अच्छा, आठवीं आयत ये पढ़ के बस आज की क्लास हम खत्म कर लेते हैं कि आठवीं आयत में यही मजमून इरशाद फरमाया गया, और इसके आखिर में आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए इरशाद फरमाया कि फइन यकफुर बिहा हाउलाई फकद वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफिरीन, यानी अगर आपके कुछ मुखातब आपकी बात नहीं मानते और तमाम अंबिया साबिकीन की हिदायत पेश कर देने के बावजूद वो इनकार ही पर तुले हुए हैं, तो आप गम ना करें, क्योंकि हमने आपकी दावत और हिदायत को मानने और अपनाने के लिए एक बड़ी कौम को मुकद्दर कर रखा है, वो कुफ्र और इनकार के पास नहीं जाएंगे, यानी वो नहीं करेंगे आपका इनकार। इसमें अहद मुबारक के मौजूदीन मुहाजरीन और अंसार भी दाखिल हैं, यानी उस वक्त जो मौजूद लोग थे और मुहाजरीन और अंसार सहाबा कराम वो भी इसमें दाखिल हैं कि वो आपका इनकार नहीं करेंगे, और कयामत तक आने वाले मुसलमान भी। और ये आयत उन सब लोगों के लिए माया फखर है कि अल्लाह ताला ने उनको मकाम मदाह में जिक्र फरमाया है, यानी जो नबी अलैहिस्सलाम का इनकार नहीं करते या नबी अलैहिस्सलाम की किसी भी बात का इनकार नहीं करते, वो सब इस आयत के मुखातब है, ठीक है, वो इस सब आयत में, बल्कि मुखातब तो मुशरिकीन मक्का है, लेकिन उन सब का जिक्र जो है वो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर मदह के साथ यानी तारीफन जिक्र किया है, प्रेज वर्दी अंदाज में जिक्र किया है। मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने बात खत्म करते हुए ये आयत, सॉरी, ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अजअलना मिन, ए अल्लाह हमें उनमें से बना दीजिए, वहशुरना फी जुमरतहिम, और हमारा हशर जो है ना वो उन्हीं के साथ फरमा दीजिए, क़यामत के दिन हमें उन्हीं के साथ उठने की तौफीक अता फरमा दीजिए, ठीक है। कितने बड़े आलिम हैं, कितने बड़े फकीह हैं, लेकिन दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह मुझे भी उनमें से बना दीजिए, ये आजिज़ी उनके सारी होती है, ठीक है। तो हमें भी ऐसे दिल से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह में मरते दम तक ऐसा ही रखिए, हिदायत के ऊपर अपने ईमान को कुफर से मुलव्वस ना करने वालों में हमें शामिल रखिए, और इसी हालत में हमें मौत अता फरमाई, ठीक है। अल्लाहुम्मा अजअलना मिन। यहाँ पे किसी ने एक सवाल लिख दिया था तो पढ़ लेते हैं कि तो ये लोई भी तो हुज्जत हुआ कि जब एक इंसान एक सिस्टम को जारी कर सकता है जिसको पहले कोई जानता भी नहीं था, तो हम एक क्यों नहीं अपने घर पर नेक माहौल बना सकते? जी, जाहिर है बात तो एक ही से शुरू होती है ना, उसने, एक ने जो है वो बुत परस्ती स्टार्ट करवाई, लेकिन उसको कबूल उन्हीं लोगों ने किया जो कि पहले से माइल थे ना इस तरफ, तो उन सब ने कबूल कर लिया उसकी बात को। नबी अलैहिस्सलाम भी एक ही थे जिन्होंने तौहीद का काम का सिस्टम शुरू किया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को भी किन लोगों ने माना? अक्सर उन लोगों ने ही माना जो कि पहले से जो है ना वो बुत परस्ती के खिलाफ थे और तौहीद की तरफ माइल थे, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दलाइल के जरिए से, मेहनतों के जरिए से और तजुर्बात के नतीजे में फिर और लोग भी फिर अपने आप को कन्वर्ट कर कर करके तौहीद की तरफ आते गए। बहरहाल बात एक से ही शुरू होती है, बात एक से ही शुरू होती है हमेशा, तो हमारे लिए तो दुबई की क्या हुज्जत बनेगा, हमारे लिए तो नबी अलैहिस्सलाम हुज्जत है, हमारे लिए तो हमारे मशायख हुज्जत है, ठीक है, कि जिन्होंने एक अकेले ही काम शुरू किया और फिर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, ठीक है ना। तराम सबको तौफीक अता फरमाए और कबूलियत वाली जिंदगी और कबूलियत वाली मौत अता फरमाए, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
Recording stopped.